हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। ध्रुव और मेहर की सगाई के दौरान उन दोनों को करीब देखकर तारा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो वेन्यू से बाहर चली आई जहां उसकी युग से बात हुई थी। युग बातों ही बातों में तारा को आगाह कर रहा था कि वो गलती से भी ध्रुव को धोखा ना दे, वरना अंजाम बुरा साबित होगा। तारा को उसकी बातों का ठीक से मतलब नहीं समझ आया। वो वापस अंदर चली आई थी तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के अंदर ध्रुव के पास एक कॉल आया। कॉल पर बात करने के बाद ध्रुव अपनी सगाई की पार्टी बीच में छोड़कर कहीं जाने के लिए निकल गया था। मेहर ने ध्रुव को बाहर जाते हुए देखा तो वो उसके पीछे जाने लगी। तभी अलीजा ने उसे रोकते हुए कहा, तुम कहाँ जा रही हो मेहर? वो ध्रुव अचानक पार्टी से निकल गया, मुझे उसे बात करनी है, तुम मुझे छोड़ो अभी, मेहर हड़बड़ाते हुए बोली। उसे किसी भी हाल में ध्रुव के पीछे जाना था। मेहर आगे जाती उससे पहले एक बार फिर अलीजा ने उसे रोक लिया था। वो बोली, उसे कोई काम होगा तभी वो गया है, वरना बिना बताए बीच में ऐसे अपनी सगाई छोड़कर नहीं जाता। ऐसे में तुम उसे कुछ पूछने भी जाओगी तो वो तुम पर गुस्सा हो जाएगा, थोड़ी देर में आ जाएगा वापस। मेहर ने उसकी बात पर हामी भरी। वो एक बार पहले ध्रुव के पीछे जाने का अंजाम भुगत चुकी थी। अब सबके सामने वो कुछ भी ऐसा वैसा करके ध्रुव को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। अलीजा ने मेहर को तो समझा दिया था, पर वो खुद थोड़ी बेचैन हो गई थी। उसने मन ही मन कहा, इतना भी क्या जरूरी काम था जो खुद की सगाई से निकल गया? अगर काम माफिया से जुड़ा हुआ है तो कॉल चाचू के पास पहले आता है। चाचू रिलैक्स लग रहे हैं, मुझे बता देता मैं कर देती। खुद की सगाई छोड़कर जाने की क्या जरूरत थी? अलीजा ध्रुव के लिए परेशान हो रही थी। वो जल्दी से वीर के पास पहुंची और बोली, क्या कुछ सीरियस चल रहा है? हम सब पार्टी में हैं और अकेले ध्रुव कहीं जाने के लिए निकल गया है। तुम्हारी बात हुई उससे? तुम दोनों तो साथ ही रहते हो ना, तुम उसके लिए इतना परेशान क्यों हो रही हो? वो कोई बच्चा नहीं है, अपने किसी काम से गया होगा, और जरूरी नहीं कि माफिया से जुड़े सारे काम सबको पता होता है। उसे भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है जिसके बारे में हम सबको नहीं पता है, अपने किसी काम के चलते गया होगा, आ जाएगा वापस, वीर ने उसे समझाया। वीर के कहने पर अलीजा को कुछ तसल्ली हुई। वीर का पूरी पार्टी में सिर्फ एक ही इंसान पर ध्यान था और वो थी अलीशा। अलीजा से बात करने के बाद वीर की नज़र अलीशा पर गई तो उसने देखा कि वो मीरा के साथ थी। मीरा किसी वजह से पार्टी में देरी से आई थी। जरूर मॉम मेरे सामने इसकी बुराई कर रही होगी, मुझे इन दोनों को एक साथ आने ही नहीं देना चाहिए था, वीर मुंह बनाकर बोला और अपने कदम उनकी तरफ बढ़ा दिए थे। मीरा और अलीशा सीधे कृषा के पास गईं। कृषा और मीरा ने एक दूसरे को गले लगाया, उन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। कितने टाइम बाद मिल रही हूँ मैं तुमसे, एक ही शहर में रहने के बावजूद हम नहीं मिल पाते हैं, मीरा कृषा से अलग होकर बोली। हाँ, क्योंकि तुम्हें ही सोशल वर्किंग करने से फुर्सत कहाँ मिलती है, तुम्हारा एनजीओ कैसे चल रहा है? वैसे मैं वीर से तुम्हारे बारे में पूछती रहती हूँ, कृषा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। सब कुछ काफी अच्छा चल रहा है, तुमने तो ध्रुव के लिए लड़की ढूंढ ली है, पता नहीं ये कब शादी करेगा, मीरा ने वीर की तरफ देखकर कहा। जब इसे ध्रुव की तरह कोई लड़की पसंद आ जाएगी तब कर लेगा, मैंने भी ध्रुव के लिए लड़की नहीं ढूंढी थी, उसने खुद ही पसंद की है, कृषा ने हंसकर जवाब दिया। वीर मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि मीरा कुछ ऐसा वैसा ना कहकर अलीशा के सामने उसका मजाक न बनवा दे। तभी मीरा ने मुंह बनाकर कहा, हाँ लेकिन कोई लड़की इसे पसंद क्यों करेगी, मुझे नहीं लगता कि इसकी लव मैरिज होगी, किसी लड़की को बहुत मनाकर मुझे इससे शादी करने के लिए तैयार करना होगा। अरे तुम ऐसा क्यों कह रही हो, इतना भी बुरा नहीं है हमारा वीर, कृषा ने वीर का कंधा सहलाकर कहा। वीर बेचारों समूह बनाकर मीरा की तरफ देख रहा था, वहीं उनकी बातें सुनकर अलीशा हंस पड़ी थी। मीरा आंटी आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, इससे कौन शादी करना चाहेगा, सिर्फ लुक्स नहीं देखे जाते हैं, किसी को पता चलेगा कि ये क्या काम करते हैं तो कोई इससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगी। हाँ हो सकता है कि इन्हीं की दुनिया की कोई बहुत चालाक सी लड़की आपकी बहू बनकर आए, अलीशा ने उनकी बात पर हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। इसी का तो मुझे डर लग रहा है, अब सबकी किस्मत युग्राना जैसी तो हो नहीं सकती कि जो माफिया किंग होने के बावजूद एक इनोसेंट सी लड़की से शादी करने को मिले, मीरा ने कृषा की तरफ देखकर कहा। कृषा जवाब में मुस्कुरा कर रह गई थी। इन सब में तारा अकेली बार एरिया में खड़ी युग की बातों पर गौर कर रही थी। तारा को कुछ पूछने का भी मौका नहीं मिला क्योंकि युग वहां से निकल गया था। मैं ध्रुव को धोखा क्यों दूंगी, उन्हें ऐसा क्यों लगा, क्या वो जानते हैं मैं कौन हूँ, और अगर जानते हैं तो मुझे अपने घर पर रहने की इजाज़त क्यों दी उन्होंने, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तारा कन्फ्यूज सी होकर खड़ी थी, वो ध्रुव से बात करना चाहती थी पर उसे ध्रुव कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तारा जहाँ युग के बारे में सोच रही थी वहीं युग इस वक्त गाड़ी में था। कुछ ही देर में वो शब के उस अपार्टमेंट में पहुंचा जहाँ किसी वक्त में वो सारा के साथ रहता था। जब ध्रुव पैदा होने वाला था तब युग ने कृषा को भी वहीं रखा था क्योंकि उस जगह के बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं था। अपार्टमेंट पहुंचने के बाद गाड़ी से निकलकर युग ने सेफ्टी के लिए इधर उधर देखा, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। वो सीधा लिफ्ट से ऊपर शब के अपार्टमेंट में गया। दरवाजा खोलते ही उसने देखा याशी मलिक के साथ बैठी हुई थी। हालांकि काफी देर हो गई थी लेकिन फिर भी याशी सोई नहीं थी। युग को वहां देखते ही याशी जल्दी से खड़ी हुई और जाकर उसके पैरों के चिपक गई थी। याशी ने सिर उठाकर युग के चेहरे को देखते हुए कहा, डैड आप कुछ ज्यादा ही लेट नहीं आए हैं क्या, मैं अकेली बोर हो गई थी, आपने कहा था यहाँ पर मॉम और भाई भी होंगे लेकिन वो नहीं है। याशी की सिक्योरिटी के चलते फिलहाल युग मुंबई के लिए आया था, वो ध्रुव के शादी के फंक्शन को भी मिस नहीं कर सकता था और याशी को भी अपनी आंखों के सामने रखना जरूरी था। ऐसे में उसे इस शब्द के अपार्टमेंट से सेफ जगह कोई और नहीं लगी। युग ने याशी को गोद में उठाते हुए कहा, मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे भाई के टेम्पररी सगाई में जाना है, इसीलिए मुझे टाइम लगेगा यश, लेकिन इट्स टू लेट, तुम्हें भी सो जाना चाहिए था। मुझे आपके बिना नींद नहीं आ रही थी। हाँ, हॉस्टल में अकेले रहती हूँ, पर अब तो आप मेरे साथ हो तो मुझे आप ही के साथ में सोना है, याशी ने जवाब दिया। युग ने उसकी बात पर हामी भरी और याशी के नोज पर हल्के से किस करके कहा, ठीक है, फिर मेरा वेट करो, मैं चेंज करके आता हूँ, तुम रूम के अंदर पहुँचो। याशी एक ओबीडियन बच्चों की तरह उसकी बात मानी और जल्दी से अपने कमरे में चली गई थी। उसके जाते ही युग के चेहरे के भाव गंभीर हो गए थे। उसने मलिक से पूछा, डिनर किया इसने? हाँ, बहुत मुश्किल से खिलाया था, वरना आपके साथ खाने की जिद कर रही थी, मलिक ने जवाब दिया। ठीक है, फिर ऐसा करो, तुम भी घर चले जाओ, याशी की सिक्योरिटी के चलते तुम्हें बहुत कम घर जाने को मिलता है, तुम्हारी भी अपनी फैमिली है, युग ने गहरी सांस लेकर कहा। मीरा और वीर दोनों ही जानते थे कि मैं किस वजह से बाहर रहता हूँ, मलिक बोला। युग ने उसकी बात पर सिर हिलाया और कहा, फिर भी चले जाओ, तुम्हें भी उनके साथ टाइम स्पेंड करने का हक है, जब मुझे जरूरत होगी कॉल कर दूंगा, और ध्यान रखना तुम्हें यहाँ से आते जाते कोई देखे नहीं।
मलिक ने युग की बात पर सिर हिलाया और फिर वहां से चला गया था। युग ने दरवाजा बंद किया और चेंज करने के बाद याशी के पास पहुंचा। याशी पहले से ही हाथ में कहानी की किताब लेकर उसका वेट कर रही थी। बिल्कुल नहीं, ऑलरेडी काफी लेट हो गई है, ऐसे में मैं तुम्हें कोई स्टोरी पढ़कर नहीं सुनाने वाला हूँ, चुपचाप सो जाओ, युग ने उसे प्यार से डांटते हुए कहा। ओके, कहानी मत सुनाया, हम बातें करते हुए सो जाएंगे, याशी बुक को साइड में रखकर कहा। युग बिस्तर पर आकर लेट गया था। याशी का सर उसके सीने पर रखा हुआ था। युग धीरे धीरे से उसके बालों में हाथ घुमा रहा था। कुछ ही देर में याशी बात करते हुए सो गई थी। वहीं दूसरी तरफ किसी को एहसास तक नहीं था कि आधी रात को ध्रुव कहां पर जा रहा है। उसके पास एक कॉल आया और वो सीधे अपनी गाड़ी लेकर निकल गया था। ध्रुव ने किसी की मदद तक मांगना जरूरी नहीं समझा था। रात के लगभग 2 बजे के करीब ध्रुव एक पुराने पुलिस स्टेशन के आगे खड़ा हुआ था, जो मुंबई से दूर एक गांव के अंदर बना हुआ था। नया पुलिस स्टेशन बनने की वजह से बिल्डिंग को बदल दिया गया था, इस वजह से वो जगह सुनसान पड़ी थी। अच्छा, तो तुमने ये जगह ढूंढी है उन्हें छुपाने के लिए? आखिर तारा के साथ तुम्हारा क्या कनेक्शन है कबीर अग्निहोत्री, जो तुम उसके भाई बहनों को किडनैप करके बैठे हो? ध्रुव ने पुलिस स्टेशन को घूरते हुए कहा। ध्रुव यहाँ पर तारा के भाई बहनों को छुड़ाने के लिए आया था। उसने अपनी वेस्टबैंड से अपनी गन निकाली और बिना किसी डर के अंदर की तरफ बढ़ रहा था। मिली और उसके भाई बहनों की सिक्योरिटी के लिए कबीर ने अपने कुछ आदमियों को लगा रखा था। आगे जाते ही ध्रुव का सामना 2 आदमियों से हुआ, जिन पर उसने बिना सोचे समझे गोली चला दी थी। गोली की आवाज़ सुनकर अंदर के आदमी सतर्क हो गए थे। लगता है बाहर कोई घुस आया है, जल्दी से उन सब लोगों के पास जाओ, देखता हूँ आज किसकी मौत आई है, एक आदमी ने चिल्लाकर तेज आवाज़ में कहा। उस जगह की सिक्योरिटी के लिए लगभग 8-10 लोगों को तैनात किया गया था। वो आदमी जल्दी से दौड़कर बाहर की तरफ गया तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया था। ध्रुव एक पिलर के पीछे छुपकर खड़ा हुआ था। जैसे ही उस आदमी ने अपने कदम थोड़े आगे बढ़ाए, ध्रुव ने उसके पीछे आकर हाथ से उसका गला पकड़ लिया था। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आयो? उसे आदमी ने हाँफते हुए पूछा। टाइम पास नहीं हो रहा था, अपनी सगाई में बोर हो रहा था तो सोचा थोड़ा फन करने चलता हूँ, ध्रुव ने बिना किसी भाव के कहा और उसकी गर्दन पकड़कर मरोड़ दी। अगले ही पल उसे आदमी की लाश नीचे गिरी हुई थी। ध्रुव ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर आगे बढ़ने लगा। एक बार फिर उसके सामने 2 लड़के आ गए थे, उन दोनों के हाथ में ही गन थी। चुपचाप अपने हाथ ऊपर करो, अपनी गन हमारे हवाले करो, उनमें से एक लड़का चिल्लाकर बोला। ध्रुव उनके ऑर्डर्स करने के बजाय अभी भी बेपरवाही से उनके सामने रिवॉल्वर उन पर ताने हुए खड़ा हुआ था। उनमें से एक बोला, पागल हो गया क्या, हम कुछ कह रहे हैं, अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें गोली। वो ध्रुव को मारने की धमकी दे रहा था, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही ध्रुव ने उसके माथे के बीचों बीच उसे शूट किया। चंद ही सेकंड्स में वो जमीन पर गिरा हुआ था। फिर ध्रुव ने सर्द निगाहों से दूसरे लड़के की तरफ देखा। ध्रुव के इस जेस्चर से वो काफी डर गया था। मैं बस ये कहना चाहता था कि, वो डरते हुए अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा था। तभी ध्रुव उसके पास में आया और उसके हाथ से गन लेकर नीचे फेंक दी थी। गलत प्रोफेशन में आ गए हो, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है तुम्हारे अंदर, ध्रुव ने सिर घाकर कहा। वो लड़का नजरें झुकाकर खड़ा हुआ था। ध्रुव ने उसे कुछ नहीं किया और उसकी आंखों के सामने से निकल गया था। वो लड़का चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया था। ध्रुव ने अपनी तरफ से लगभग सभी आदमियों को निपटा दिया था, लेकिन जैसे ही वो आगे पहुंचा, एक आदमी उसके लिए पहले से तैयार खड़ा हुआ था। उसने पीछे से आकर अपनी बड़ी सी गन से ध्रुव का गला पकड़ लिया था। अपने आप को बहुत होशियार समझते हो, तुझे अंदाजा भी है तूने हमारे सारे आदमियों को मार दिया है, लेकिन अब तेरी बारी है और तुम यहां से जिंदा नहीं बचकर भाग पाओगे, वो आदमी सख्त आवाज में बोला। वो उनका बॉस था। उसने गन से ध्रुव का गला दबाना शुरू कर दिया था। ध्रुव उससे बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने ध्रुव का गला काफी सख्ती से पकड़ रखा था और उसे रौंद रहा था। सांस घुटने की वजह से ध्रुव का चेहरा लाल हो गया था। उस आदमी ने उसे काफी अच्छे से ट्रैप किया था। मैं जानता हूँ तुम कौन हो और बहुत मुश्किल से पकड़ में आए हो, तुम्हें यहाँ अकेले नहीं आना चाहिए था। अगले 15 मिनट में हमारे बॉस यहाँ पर आ जाएंगे, उन्हें इनाम में मुझे तुम्हारी डेड बॉडी गिफ्ट करनी है ध्रुव राणा, वो आदमी सनक भरी आवाज में बोला। वो यहाँ कबीर की बात कर रहा था।
ध्रुव ने तारा के भाई बहनों मतलब मिली के भाई बहनों को ढूंढ निकाला है। देखते हैं अब क्या करता है। चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। अगले पार्ट पर मिलते हैं।